بل قلوبهم فی غمرت من حذا، بلکہ ان کے دل تو مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے. یہ حذا کیا ہے؟ اس کتاب کے حق کے ساتھ بولنے کی حقیقت. غمرہ میں کہتے کون سی کتابیں بولے گی؟ اب دوبارہ وہی بدکار اور ایسے بدقسمت لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا جنہوں نے آگے نہیں بڑھنا، جو پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں تو ہر ایک کو آگے دیکھتے ہیں اپنے سے، اور دین میں سب کو اپنے سے پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. دیکھیے کوئی بچہ آپ امتحان میں دو سبجیکٹس میں فیل ہو جائے اور ماں کہے کہ یہ کیا کیا تم نے، تو کہنا وہ دیکھیں وہ اتنے تو پانچ میں فیل ہوئے ہیں، میں ان سے نہیں اچھا. ہمیشہ کس کو دیکھتے ہیں ہم، کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ چھوڑیں اگر کوئی میچ، کوئی چیز جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹی وی میں، دیکھ سب کی نظریں کس پہ ہوتی ہے، کیمرے کا رخ کس کھلاڑی پہ ہوتا ہے جو دوڑ کے آگے جا رہا ہے؟ کبھی یہ بتاتا ہے کہ یہ آگے رہ گیا کہ اور وہ دیکھو وہ پیچھے رہ گئے؟ ہمیشہ ہم آگے والے کو دیکھتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی یاد رکھے، ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. پیچھے والوں کو دیکھیں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. گاڑی چلاتے ہوئے جو مڑ مڑ کے دیکھتا رہے گا وہ آگے کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ دو مختلف کردار بتا رہے ہیں، ایک کام کر کے آگے بڑھ کے ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کرتے 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 چلتا جاتا ہے. اور وہ ہم لہا سابقون، اور وہ بھاگ جائے گا، نیکیاں کرے گا، کامیاب ہوگا. کوئی ایک رٹی رٹائی نیکی کو دین نہیں کہتا وہ، بلکہ وہ دین کا ایک پورا باغ لگاتا ہے پھر آگے جاتا ہے. اور ایک دوسرا شخص، اتنا کچھ اس کے پاس تھا زندگی میں کرنے کو، لیکن بل قلوبہم فی غمرتن، پھر آ گیا دل مدہوشیوں میں اس خوفناک حقیقت سے. وَلَهُمَا مَعْلُم مِن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال تو مومنوں کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں. مومنوں کے کون سے تھے؟ یہ پچھلی آیتوں کی لسٹ اور سورت کے شروع کی لسٹ. اور ان کے ہیں اس سے مختلف، ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں. اب ان کا نصیب ہی یہ تھا، انہوں نے اپنے لیے کوئی گول بنایا ہی نہیں، کرتے کیا؟ اب دنیا سے تو گئے، زندگی تو پوری ہوئی، آگے گئے حتی اذا خسن مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے وقت. اذا ہم یجعرون، اس وقت وہ چلائیں گے. کیا کہا جائے گا؟ لا تجعر اليوم، او ظالمو آج نہ چلاؤ، کیونکہ انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی، چپ کر کے بیٹھے رہو. یہ جو لفظ ہے نا یجارون اور تجارو، یہ جیم را حمزہ سے ہے، جانور کے ڈکارنے کو کہتے ہیں. کبھی بھینس کو بھاں بھاں کرتے دیکھا؟ یہ وہی لفظ ہے. مت چلاؤ، جانوروں کی طرح مت چیخو. جوار نہایت عجز اور درماندگی کی حالت میں چیخنے چلانے کو جوار کہتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے اکیلے میں جانوروں کی یہ آوازیں سنیں تو بڑا درد آپ کو اس میں محسوس ہوگا جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. گدھے کی بھی آواز جو بڑی غیر پسندیدہ ہے ہمارے حساب میں، اس کی آواز میں بھی آپ کو ایک درد محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بولنے کو جانوروں کا ڈکارنا کہا. کیوں؟ کہ زندگی جو اینیمل انسٹنکٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، صرف حیوان انسان کو ہی پالتے رہے، روحانی انسان کو تو انہوں نے اس کا حق ہی نہ دیا. کب چپ کر جاؤ؟ اور یہ سب کب کریں گے؟ جب ان کو عذاب کی وہ دہکتی ہوئی بھٹیاں سامنے آئیں گی. چپ کرو، انکم منا لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے اتنا غصہ؟ کہا اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، وہ وقت یاد کرو جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے. اتنا تکبر تھا، تم اتنے سیلف سفیشینٹ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تمہیں ایسے لگتا تھا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اسکول کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں خاندان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے پچھلی سوچوں کو نہیں جانے دینا. اس طرح بھاگ جاتے تھے، پاؤں موڑ کے جاتے تھے، تم پیٹ پھیر کے جاتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تم نے کیا کھویا اور تم نے کیا پایا. جب توبہ کا وقت تھا تم نے توبہ نہ کی، جب شرک اور کفر سے بیزاری کے اعلان کا وقت تھا تم نے نہ کیا. بار بار پکارا جاتا رہا، دعوت دی جاتی رہی، تم نہ آتے رہے کیونکہ مستکبرین، غرور اور تکبر کرتے ہوئے، بڑے بڑے تھے نا، کہتے تھے ہمیں نہیں ضرورت اس کی، اور اصل وجہ کیا تھی ان ساری چیزوں سے رکنے کی؟ سامرن تحجرون، اللہ اکبر، پھر تم راتوں کو بیٹھ کے افسانہ گوئی کیا کرتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا سامرن، یہ افسانہ گوئی کو کہتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سننا دیکھنا. آج کیا ہے؟ یہ رات کی محفلوں کا تذکرہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو دن میں اللہ کی کتاب کے لیے آنے نہیں دیتی. یہ ویکینڈز کی نائٹس ہیں، یہ ہالیڈیز کی نائٹس ہیں، یہ شادی سے 10-15 دن پہلے کے فنکشنز کی نائٹ ہیں کہ ساری ساری رات تم چوپالوں میں بیٹھے، کلبوں میں بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھے، سامرن تہجرون، نیندوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے تھے ان کاموں کو کرنے. اشارہ تو مکہ کے ان لوگوں کی طرف ہے جو حرم کے صحن میں محفلیں سجاتے تھے. اس دور میں تو میڈیا نہیں تھا نا، بیچاروں کے گھروں میں ہی ٹی وی نہیں تھے، اس لیے ان کو سب کو ایک جگہ جمع ہو کے شاعروں سے اور قصیدہ خوانوں سے باتیں سننی پڑتی تھی. آج تو ہر بندے نے اپنا پسندیدہ ٹیسٹ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے. سامرن کا لفظ سمرا سے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے چاندنی رات، مون لائٹ. عربوں کی عادت تھی کہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنتے تھے، کیونکہ اس دور میں بلب تو تھے نہیں، تو چاند ہی ایک ایسی صورت تھی جس میں کوئی رومانٹک ماحول بنا لیتے ہوں گے کہ ذرا وہ باتیں کریں. پھر اسی سے لفظ سمر کو قصہ کہانی کے معنوں میں کہا جانے لگا. سامر کہتے ہیں قصہ گو کو. آپ نے لفظ سامری پڑھا؟ آج سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ فرعون کے دور میں موسیٰ کے سامنے جو آیا تھا سامری، وہ کون تھا؟ اصل میں قصہ گو تھا، تماش بین تھا. جیسے اس سامری نے ایک بین بجایا اور سارے اس کے پیچھے چلے گئے، آج تو گلی گلی کا سامر الگ ہے. یہ بہت بڑی وجہ تھی قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کی، کیونکہ ایسے سامرین جو تھے یہ حرم کے باہر جا کے اللہ کے نبی اور اس قرآن کی حجب کیا کرتے تھے، بے اصل بے کار باتوں میں اتنا مشغول کر دیتے تھے کہ فجر کے قریب تو ان کو نیند آتی تھی، ساری رات جاگتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے سارے لگے میں اپنے کام کام کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز آخر میں کریں، یہ بھی عشاء کو وقت پہ پڑھے سو جائیں. اس کے بعد جاگنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سو گئے تو آنکھ لگ گئی، سارے دن کا تھکا ہارا بندہ اس کو ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں کدھر تھا اور کیا نہیں تھا. اور یہ جو لفظ ہے نا تہجرون، ہجر سے ہے، ہا جیم را، یہ اسداد میں سے ہے، دو مختلف معنی آتے ہیں اس کے، آگے بھی پڑھیں گے ہم جا کے اس لفظ کو، وہاں اور زیادہ کھل کے آئے گا، لیکن اس کا معنی ہے فضول، بکواس، گالی گلوچ، گندی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات بولتے تھے وہی تھے ان کے حالات. راتوں کو محفلیں لگنا اس دور کا بھی فن تھا اور آج بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا کہ رات کو نہ جاگو اور جلدی سو جاؤ اور پھر انسان کا معاملہ ختم ہو، اگر اس کے خلاف کوئی کرتا حضرت عمر کے دور میں تو آپ کیا کرتے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق عشاء کے بعد کسی کو فضول قصوں کہانیوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے، اور بعض کو سزا بھی دیتے اور فرماتے کہ سو جاؤ، شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق مل جائے. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. آج کے حکمران ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ اب دیکھیں جو رات کو آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا، پورے دن کے اعمال پہ ایک اچھی سٹیمپ لگ گئی نا. اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی سچ ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے دن بدن، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو اٹھے گا تو اسلام پہ اٹھے گا، اور رات کو سوئے گا تو کفر پہ سوئے گا. آج کے دور میں علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایسی نافرمانی کی اور گناہ کی چیزیں دیکھ کر کے سوئے گا کہ گویا کہ وہ کفر پہ سویا، اور کفر کے کئی درجے. ہم اپنی راتوں کو دیکھیں، ہمارے فنکشنز کیوں نہیں دن میں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دن میں کپڑے پہننے کا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ دن میں ڈسٹریکشن بہت ہے، میوزک کا مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں جتنے پوش علاقے ہیں، جتنے لیڈز और पढ़े लिखे लोगों को आप देखेंगे, उनकी रातें भीगती हैं, जब लोग सोते हैं तो वो जागते हैं, और जब लोग उठने वाले होते हैं तो उनको नींद आती है। आपको पता है कि मगरिब की और ईशा की नमाज का जो वक्त होता है ना इन बिटवीन, इसके बीच में एक हवा चलती है, यानी आप कह लेंगे ईशा की नमाज का बिल्कुल इब्तदाई वक्त। आज साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया। हदीस का खुलासा क्या है कि ईशा की नमाज के बाद एक हवा चलती है और उसके अंदर नींद होती है। और साइंस ने बताया, मैंने ये इसके ऊपर एक कहीं रिपोर्ट शेयर भी की थी, कि उस वक़्त हवा भारी हो जाती है, तो वो जिस जिस को लगती है ना उसको नींद आती है। अगर उस वक्त बंदा सो जाए ना तो उसको बड़ी प्यारी नींद आती है, और वो आधी रात के वक्त तहज्जुद के वक्त उठ जाएगा और फ्रेश होगा। और फरमाया कि अगर उस वक्त को गंवा दे, कोई ना सोए, तो उसके बाद उसको नींद नहीं आती और वो बेचैन नींद है, फिर कहते हैं आंखें अब खुल गई हैं, नहीं आप मैं फ्रेश हूँ, मैं जाग सकती हूँ। कई लोग सिर्फ इसलिए भी जल्दी खैर से सोते हैं कुछ घंटे शाम के पास, कि फिर आधी रात तक भी तो जागना है ना। और मुझे याद आता है हमारी नानी अक्सर ये जुमला बोलती थी, कहती थी नींद का वक्त गुजर गया मेरी। आज तो वो रस्म ही नहीं रही। देखिए आज ये आर्टिफिशियल लाइटों ने, टीवी ने, बहुत ज़्यादा कंफर्ट के सामान ने हमारी रात और दिन का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। हम जब उठते हैं तब हमारी सुबह होती है। एक बच्ची को मैंने देखा, पता नहीं मेरे ख्याल है 1-1.5 बजे के करीब उठी, और फिर जब अंदर आई बैठी किचन में तो बड़ा रोब डाल रही है, मैंने नाश्ता ही नहीं किया। मैंने कहा इसलिए कि नाश्ते का वक्त ख़त्म हो चुका है, दूसरे लोग लंच कर रहे थे और वो मासी पे आके रोब डाल रही थी कि मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया। जो 1:30 या 2:30 पे उठेगा वो तो खुद सुबह करेगा, और वो अपने टोस्ट बना के खाएंगे तो आप बताएं उनकी दोपहर कब है। तो उन बेचारों को तो फिर रात 2 बजे तक जागना है ना डिनर करने के लिए। बिल्कुल फितरत का अपोजिट। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगियों में कोई खैर का काम करें तो सोने जागने को ठीक कर लें। इतना वक्त मिलेगा हमें, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं की। फरमाया फलम यदब्बरुल कौला, क्या उन्होंने कभी तदब्बुर नहीं किया इस बात पर, इस कुरान पर? अम जाहुम मालम याति आबाउहुम अलव्वलीन, या आई थी इनके पास कोई ऐसी चीज़ कि जो नहीं आई थी इनके बाप दादाओं के पास जो पहले थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चलो नहीं मिला पहले लोगों को कुरान का मौका, ये नबी नहीं आया उनकी ज़िंदगी में, लेकिन कभी तुमने गौर किया अल्लाह ने तुम्हें कितनी प्यारी किताब दी? खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी रातें कुरान के लिए जागती हैं। बिल्कुल पसंदीदा नहीं है रात को जागना सिवाय पढ़ने पढ़ाने के लिए। इमाम बुखारी के बारे में आता है कि एक दफ़ा एक शख्स उनके पास रात बसर करने गए, और अगले दिन सुबह जो उन्होंने गवाही दी, कहते हैं कि गालिबन मैंने इमाम बुखारी को रात में 60-70 बार उठ उठ के बैठते देखा। होता क्या था कि पढ़ते थे अपना सबक, जो भी काम करते होंगे उस वक्त, फिर नींद आती, उंगलाट तो आ ही जाता है ना, फिर जब होती कुछ मिनट गफलत के होते, फिर ऐसे चौंक के उठते और फिर पढ़ने लग जाते, फिर सोते, फिर उठते। हम तो शायद दुनिया के इम्तिहानों के लिए ऐसा करते थे। हाँ मेडिकल का पेपर है, हाँ आज बॉटनी का पेपर है, जोलॉजी का पेपर है, ये तो करना ही है, फिर तो चाय के साथ कॉफ़ियाँ भी पीते हैं कि रात जागना है। हमारी कितनी रातें इस किताब के लिए जगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने गौर ही नहीं किया। ये क्या प्यारी चीज़ थी, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, रातों को बैठ के तुम महफिलें सजाने के लिए जागो और इस किताब के लिए जागना पड़े तो तुम्हें इतना मुश्किल लगे। इसी तरह ये सामिर के लफ्ज़ में एक और चीज़ सामने आ गई कि चांद की चांदनी जो दरख्तों की शाखों और पत्तों पर पड़ती है, इसको समरुन कहते हैं। वही ये बात, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। हज़रत उमर फरमाया करते थे, ये भी कोई अक्लमंदी है कि रात के पहले हिस्से में देर तक जागते रहो और आखिरी हिस्से में जो नज़ूले रहमत का वक्त होता है उसमें सोते रहो। अब तो अपने किरामन कातबीन को दम लेने दो, ये तफसीर कुर्तुबी की रिवायत है। सुभान अल्लाह। ये जो बात मैंने शुरू की थी ना बीच में, उसका आखिरी हिस्सा भूल गई थी जो अभी इस कॉल से याद आ गया, कि रात का शुरू हिस्सा जो होता है ना, जो मगरिब का बाद का वक्त है, इसमें बलाएं उतरती हैं आसमान से, जो जिन्नात घरों को जा रहे होते हैं, जो भी भूत प्रीत, जो भी आप स्पिरिट्स की बात कर ले, वो जाती हैं उस वक्त। और जो रात का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है ना, उस वक्त आसमान से रहमतें उतरती हैं। हम जब अमूमन फंक्शंस में निकलते हैं और जब ओपन एयर में है या पीसी के लॉन में और दिस एंड दैट, तो उस वक्त हम फुल एक्सपोजर के साथ होते हैं, सजे संवरे, डेकोरेटेड, बाल बने हुए, अब जब हम बाहर जाते हैं ना, तो ये ईवल्स गुजरती है ना जो, तो ये हम पे असर करती हैं। इसलिए आप देखिए, कभी रात देर तक बच्चे बाहर हैं तो आके रोते हैं रात को। और मैंने मगरिब के जो वक्त शुरू हो जाता है, तो उस वक्त खास तौर पे खुले मुंह बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। लेके जाना पड़े तो छुपा के ले जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जब गुजरती हैं ना, तो हम लोग तो कुछ नमाज, आयतुल कुर्सी, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं ना, तो हम पे असर नहीं होता या कम होता है जिन्नात का। बच्चे बहुत सॉफ्ट हैं, जैसे फूल को हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है ना, इस तरह बच्चे भी मुरझाने लगते हैं। तो जब उनके ऊपर ये चीज़ें पड़ती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी असरअंदाज होती है उन पर। और हम पूरा जिन्नात का एक्सपोजर ले के घर आते हैं, और जब आसमान से रहमतें उतरनी है तो हम चादरें तान के सो जाते हैं। फिर कहाँ से रहमत है? इतना आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है। इसीलिए आप देखिए कि दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में भी खुशी नहीं है। जिनकी रातें गुजरती नाइट क्लब्स में, आप जरा उनके चेहरे पे देखा तो करें, कितना उनके चेहरों पे ऐसी कैफियत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, तुम्हें इस किताब की कदर नहीं आई, तुम्हारे बाप दादा के पास ये कुरान नहीं आया, तुम्हें मिल गया, तो क्या तुम इसमें तदब्बुर नहीं करते? अम लम यारफू रसूलहुम, क्या इन्होंने अपने रसूल मुकर्रम को ना पहचाना? कोई तारुफ नहीं हुआ इस रसूल के साथ इनका? इतनी दिल सोजी से, इतने इखलास से बार बार हक की दावत दे रहा है ये रसूल, ये कोई अजनबी शख्स है? पहली दफा देखा है क्या? इसके माजी को नहीं तुम जानते? क्या ये कोई नया शख्स आया? फहम लहू मुनकिरून, क्या तुम इसको नहीं मानते, इसके मुनकिर बने हुए हो? ऐसे लगता है कि हम में तुम में तो कभी दोस्ती ना थी, हम में और तुम में तो कभी चाह और राह ही नहीं थी, तुमने तो इस नबी के साथ इस तरह की बातें कर दी। ऐसी बातें करते हो इस नबी के बारे में कि अम यकूलू न बिही जिन्नतुन, अच्छा, इसे तो कोई जुनून का मर्ज हो चुका है। ये अल्लाह के नबी पे लगने वाले 5 इल्जाम है जिनका तस्करार है। अफलम यदब्बरू से लेके अम यकूलू न बिही जिन्नत तक, ये वो चीजें थी जो मुशरिकीन के अल्लाह के नबी पर ईमान लाने के रास्ते में रुकावट बनी हुई थी। कुरान की बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, नबी उनको अच्छा नहीं लगता, कभी उनको जुनून की कहते, फनेटिक कहते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि इस नबी के साथ जिन्नत उन्हें? जुनून से जीम नून नून, वो नबी जिसकी मोहब्बत की बातें करते हो, तुम्हें वाकई लगता है कि मजनू ऐसे होते हैं? कल तक इसकी सच्चाई की तुम दलील देते थे, आज तुम इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? इतना अचानक इनकलाब कैसे आ गया? चलो 19-20 हो जाता है, लेकिन 19 और 9 तो नहीं होता। ये तो फिर तुम्हारी या पहले ना समझी की दलील थी, या अब तुम ना समझ बने हुए हो। सिर्फ वजह यह है कि बल जा हम बिल हक, बल्कि बात यह है कि वो तो ले आए हैं आपके पास हक, और अक्सर हम लिल हक की कारी हूं, और अक्सर लोग हक को नापसंद करते हैं, एलर्जिक होते हैं हक से, उनको हजम नहीं होता हक। वजह क्या है भाई? हक तो इतनी प्यारी चीज है, हक सच कितना अच्छा लगता है, लेकिन हक क्यों अच्छा नहीं लगता? इसलिए कि वलवित्तबल हक वअहवाअहुम, क्योंकि हक ख्वाहिशात के खिलाफ होता है। हाँ, अगर हक पैरवी करता है इनकी ख्वाहिशात की, लफसदत इस समावात वल अर्द, तो दरहम बरहम हो जाते आसमान और जमीन, वमन फी हिन्ना, और जो कुछ भी इनके बीच में है। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुमन ज़िक्रिहिम मोरिदून, हाँ हकीकत के है, बल्कि हम इनके पास ले आए हैं इनकी नसीहत, तो वो अपनी नसीहत से ही रूगरदानी करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ देखिए कि हक और ख्वाहिश का तकाबुल करेंगे, ये है वो क्रीम पॉइंट जो अक्सर लोगों की नज़रों से महव है। लोगों को कुरान बुरा नहीं लगता, लोगों को इस्लाम बुरा नहीं लगता, लोगों को कुरान की ये तालीम भी बुरी नहीं लगती, लोगों को दर्स भी बुरे नहीं लगते। ये सारी चीज़ें फितरतन हमारी रूह की पुकार है, लेकिन एक चीज़ लोगों को बुरी लगती है, और वो क्या है कि जो उनकी ख्वाहिश पे पाबंदी लगाए। अल्लाह ताला ने यहाँ एक इतनी बड़ी हकीकत बता दी, एक क्राइटेरियन बता दिया किसी भी चीज़ को परखने का। दीन के नाम पे किसी चीज़ को आप दीन समझना चाहते हैं ना, तो उसकी एक दलील है कि देखें कि इस दीन को अपनाने, इसके करीब आने के बाद ख्वाहिशात पे पाबंदी लग रही है कि इसके साथ साथ मनचाही जिंदगी भी बसर हो रही है। ये है वो बड़ी वजह। जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते तब्दीली नहीं पाते, ये नहीं चाहते, ये नहीं हो सकता। कुरान पढ़ा लो, 5 पारे पढ़ के दे देती हूँ अभी, तुम मुझे दे दो, मैं 1000 दफ़ा पढ़ के दाने तुम्हें दे दूंगी। कोई बुरा नहीं समझता। दरूद पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, अच्छा कैसे पढ़ना है, आओ बिल्कुल अपने साथ और 2-4 को ले आऊंगी। जहां बात आती है कि आओ पढ़ना है समझ के, तो पहलू बदलने लगते हैं, बैठना ही मुश्किल लगता है। सब लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब कोई कुरान सुनता है तो उसको समझ आता है, अच्छा भी लगता है। मज़ा जिसको अपनी ज़ुबान में आप कहते हैं, हालांकि मैं नहीं मानती इसको कि हम कुरान सिर्फ मज़े के लिए सुने, लेकिन एक नज़ूर, एक सकीनत होती है दीन की महफिलों की, ये सबको मिलती है। लेकिन दोबारा क्यों नहीं आ पाते, और आते आते रुख हम क्यों जाते हैं कि घर वाले कहेंगे अब चुप करके बैठ जाओ, अब तुम्हारी तनकीद का रुख हमारी तरफ होने लग गया, इसलिए बस बहुत है, अब तुम मेरे आगे बोल रही है, चुप करके बैठ जाओ। ये है बात जिसकी वजह से लोग नहीं आते हक की तरफ, उनको हक अच्छा ही नहीं लगता, उनको पसंद ही नहीं आता ये हक, कहते हैं कि हम नहीं इसको मानेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, बिल फर्ज हम तुम एक चॉइस देते हैं कि जाओ तुम ख्वाहिश पे ज़िंदगी बसर कर लो, नतीजा क्या होगा? देखिए, किसी बंदे के लिए मनपसंद चीज़ क्या है, कि आप क्या पसंद करेंगे, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या खाएंगी, आप क्या पिएंगी, आप क्या पहनेंगी, चलो बेटा आओ मैं तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करवा दूँ, ये बंदे के लिए सबसे मरगूब जुमला होता है, आप जो चाहें। चलिए, अल्लाह ताला ने कहा लोगों की ख्वाहिशों पे छोड़ देता ना मैं इस दुनिया को, ना पाबंदियाँ देता, ना हलाल हराम की बातें आती, ना लिमिटेशंस होती, तो पता क्या कि ज़मीन और आसमान बिगड़ जाते। मसलन कैसे, थोड़ा सा खेलते हैं। आप सुबह बच्चे से कहे बेटा अगर आपका दिल चाहे तो आप स्कूल चले जाइएगा, वैसे ना दिल चाहे तो आप आराम फरमाइए। आप बताए कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे फिर वो 18 साल की उम्र के होके, जब पूछेंगे लोग लॉ डिग्री का है, कोई बच्चा स्कूल जाए? आप यहाँ काम करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, आप जब चाहें आए बैठें, जो चाहें करें, ना आए नो प्रॉब्लम, चले हम ही आपसे खेल लें। आपको कुरान सीखना है, सीखना है आपको, किधर है तैयबा, आज भी नहीं है। देखिए, हम अगर सिर्फ आपको एक रूल दे देना साथ, और ये रियली हम करते हैं, लोग कहते हैं हमें कोर्स नहीं ज्वाइन करना, क्लास नहीं ज्वाइन करनी, हम लोकल दरसों में आएंगे, वजह क्या है? आए आए ना आए ना आए, ये रोल कॉल ना लगाए हमारी, हमें बुक्स नहीं खोलनी। आप देखें, अगर आप कोई कह दिया जाए कि आपको कुरान सीखना है, जब चाहें आए नो प्रॉब्लम, जब चाहें जाएं, आप में से कितने लोग हैं जो 9 बजे आए? अभी भी जो आते हैं मेरा हाल है बड़ा अल्लाह का फजल है। और आपसे क्या, आपकी छुट्टी का टाइम क्या, जब मर्जी जाए, मेरा ख्याल है कि बाहर से वो गार्डमैन आ जाए तो फिर भी हम अंदर बैठे हो। बंदा हमेशा अटकले चाहता है। पुलिस में आप अच्छा जी ये स्पीड कैसे गाड़ी चलाएं, कहाँ रोकें, जहाँ मर्जी चलाएं, रेड पे रुकें, ग्रीन पे, जहाँ मर्जी गाड़ी रोकें, या स्पीड के जहाँ मर्जी, लफसदत इस समावतु वलर, मुझे तो सोच के कुछ होने लग गया है कि आप सिर्फ ब्रेक्स निकाल दें गाड़ी के तो गाड़ी जाके कहाँ गिरेगी, किसी न किसी खड्डे में ज़रूर गिरेगी। लोग ये चाहते हैं, और अल्लाह ने कितनी सच्ची बात कही, इसको सुनते वक्त आपको महसूस हो रहा है कि अल्लाह की ज़ात बिल्कुल अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वाली बात है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। बच्चों से पूछ लें, माँ बाप से पूछ लें, बीवियों से पूछ लें, शोहरों से पूछ लें, हर जगह ये असूल आएगा कि आप मनमानियाँ करें फिर देखें क्या होगा। आप ज़रा छुट्टी दे के तो देखें मियाँ को, जब मर्ज़ी आए आप, बीवियों को कह दें आप पकाएं खाना ना पकाएं, कर लें काम कर लें जो चाहें, दुनिया का काम चल ही नहीं सकता, तो फिर बताओ कि इस चीज़ के ऊपर अगर अल्लाह ने हक की चोट डाल दी तो क्या बुरी बात है? बल अतई ना हम भी जिक्री हम, इन्हीं का तो जिक्र लाए हैं, इन्हीं की तो एक नसीहत, एक याद दहानी लाए हैं ना। इसे मिलती भी आयत आपने पढ़ी थी सूरत हज में, फी ही जिक्रुकुम, इसमें तो तुम्हारा जिक्र है, फिर गौर नहीं करते, फिर सोचते नहीं हो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लेकिन कितने बदकिस्मत हो कि अपनी ही बात से तुम मुंह फेर रहे हो। क्यों नहीं अच्छा लगता इनको ये बात, वही चीज़ जो तुम्हारी इज्जत और शर्फ का सबब हो सकती थी, वो किताब तुम्हें दी जिसके ऊपर ईमान ला के तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जत मिलनी थी, तुम्हें वही बुरी लगी, तुम अपनी खुशकिस्मती को खुद ही धक्के दे रहे हो। कल तुमने हिदायत का सूरज बन के चमकना था, आज तुमने खुद ही अंधेरों में रहना पसंद किया, और एक और वजह इसलिए भी नहीं आते कि शायद अम तस अलहम खर्चन, क्या आप इनसे कुछ मुआवजा तलब करते हैं? ये जो लफ्ज़ खर्च है ना, बस इसमें दो नुक्ते नीचे और लगा लें तो उर्दू में इसका तर्जुमा है खर्च। खर्च, खराज का लफ्ज़ पीछे पड़ा है ना सूरत कहफ में, जैसे खर्च है ना इसी तरह उर्दू में खर्च होता है। और शायद यही की चीज़ होगी, अरबी में चे नहीं होता तो जीम है। कहा कि क्या आप इनसे कोई मुआवजा मांगते हैं? इसलिए नहीं आना चाहते कि अच्छा शायद आपको कुछ इस नबुवत के कामों पे पैसे देने पड़ेंगे, कुछ आपको शान देनी पड़ेगी, तो इनको बता दो कि फ़खरा जो रब्बी का खैर, मेरे रब का दिया हुआ मुआवजा बहुत है। वो जो खुशी और इत्मीनान और सुकून दे रहा है और तुम्हें समझाने का जो मौका मुझे दे रहा है, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और तुम क्या दोगे? असल खजाने तो रब के हाथ में हैं, इसलिए कि वहुवा खैरुर रासिकीन, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। ये उज़र पूरे किए जा रहे हैं ना कि ना आने की वजह क्या? ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बंदा हक की तरफ नहीं आता ना, तो कुछ लोग जो मैनेजमेंट में, वो बैठ के वजूहात सोचते हैं। मेरा ख्याल है ये वजह हो सकती है। अच्छा नहीं फिर ये होगी, अच्छा वो होगी, बिल्कुल वही अंदाज है। अच्छा शायद फिर कोई माली मसला होगा, अच्छा फिर सुबह घर से नहीं आ सकते, अच्छा शायद बीमार होंगे, इस तरह की बातें होंगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ तो नहीं समझ आ रही कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दिख रही है, तो फिर मान जाओ कि ये नहीं आ रहे तो ये ख्वाहिशों पे चोट नहीं खाना चाहते। व इन नकलतद ऊह मिला सिराते मुस्तकीम, ए नबी आप इनको वाकई सीधी रास्ते पे बुला रहे हैं, बुलाते रहिए। व इन अल्लज़ीना ला यूमिनून बिल आखिरती, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, अनिस सिराती लनाकिबून, अल्लाह अकबर, वो तो राह रास्त से मुनहरिफ होने वाले हैं। आप बुलाते रहे, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं चाहिए वो पास से पलट जाएंगे। ये जो लफ्ज़ है ना नाकिबून, ये नाकिब की जमा है, नून काफ बा। नकूब अरबी में कहते हैं फिरने को। ये जो हमारे कंधा होता है ना, ये दो कंधों के बीच में, अगर आप देखें ना, जब यूं मैं फिरूंगी ना तो क्या होगा, ये कंधे की हड्डी का कुछ ताल्लुक होता है। इसी कैफियत को इधर पेश किया गया, सीधे रास्ते पर जाते जाते इधर उधर मुड़ जाना, इसको कहते हैं नकब। अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान है जो इंसान को सीधे रास्ते पे चला सकता है, वरना ख्वाहिशें तो बंदे को इधर उधर ले जाती हैं। ये चल रहे होते हैं हक के ऊपर, इस रास्ते पे, इस चीज़ के ऊपर, लेकिन आते आते चलते चलते लना की बोन यूं पलट जाते हैं कि जैसे कभी आए नहीं। यहाँ तक आप देखें कि वो मज़मून पूरा हो रहा है कि जो अल्लाह के नबी की इखलास से भरी हुई दावत के जवाब में मक्का वालों का रवैया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। कुछ चीज़ें मैंने एक स्ट्रेच में पढ़ने के लिए स्किप भी की हैं ताकि आप इस मज़मून को अपनी तरफ रखें। यहाँ एक दो तो चीज़ें सिर्फ कोट करवा दूँ। यही जो लफ्ज़ है, खुलासा तो आपको समझ आ गया इन सारी बातों का कि अल्लाह के नबी जो बुलाते थे ये नहीं आते थे। ये जो लफ्ज़ है ना आयत नंबर 66 में, तनकिसून, फकुन तुम अलाकाबिकुम तनकिसून, तो ये लफ्ज़ नून काफ स्वाद से है, नकसुन। नकूस कहते हैं किसी चीज़ से पीछे हटना, एड़ियों पर पलटना। अब बस आखिरी दो आयतों में इस बात को हम पूरा कर लेते हैं कि नहीं मानते थे, हम नहीं मानेंगे नबी की बात, तो अल्लाह कह रहे हैं नहीं मानते तो फिर ना मानो, क्योंकि जब तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला कुछ और करेगा। और वो क्या? अगली दो आयतों में कहत की तरफ इशारा है। जब मक्का वालों ने अल्लाह के नबी की दावत को मुसलसल ठुकराया और आपके लिए हालात इतने तंग कर दिए कि आप मक्का से निकल कर मदीना चले गए, तो पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म का कहत आया, उसी की तरफ इशारा है। वलौ रहमनाहुम वकशफनामा बिहिम मिन दुर्रिन, और अगर हम मेहरबानी फरमा भी दें इन पर और दूर भी कर दें उस मुसीबत को जिसमें वो मुब्तला हो चुके थे, या मिन दुर्रिन से मुराद वो कहत है जिसमें ये मुब्तला किए गए, इसके बावजूद भी होगा क्या इसके बाद? ललज्जू फी तुग्यानिहिम यामहून, तो उस मुसीबत को जिसमें ये मुब्तला हैं अगर हम दूर भी कर दें तो फिर भी ये भड़ते जाएंगे अपनी सरकशी में, अंधे बने हुए। इसलिए वलकद खजना हम बिल अजाब, यहाँ तक कि हमने इनको पकड़ लिया अजाब के साथ, कहत के साथ, और जब अल्लाह की पकड़ आई, फमस्तकानू ली रब्बिहिम, फिर भी ना झुके अपने रब की बरगाह में, वला यतदर्राउन, और ना वो गिड़गड़ा कर तौबा करते हुए झुके। यानी इनकी अकड़ इतनी थी, अल्लाह ने इन पे अजाब भी भेजा, फिर भी इनको समझ ना आई। हत्ता इज़ा फतहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, यहाँ तक कि हम खोल देंगे इन पर दरवाज़ा सख्त अजाब वाला। पहले तो छोटा सा अजाब दिखाया था ना, अब अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाजे खोलेगा जिसमें से शदीद किस्म का अजाब आ रहा होगा। और इज़ा हुम फीहि मुबलिसून, उस वक्त तो वो बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। ना माने, शौक से ना माने, हम इनके ऊपर ऐसे हालात खड़े कर देंगे कि फिर मायूस होंगे। ये जो लफ्ज है ना मुबलिसून, मुबलिस की जमा है, बलसा बालाम सीन इसका रूट है, हैरत और मायूसी का मजमुआ, इसी से लफ्ज इब्लीस है ना। जब इंसान ख्वास बाख्ता हो जाए और उसे अपनी निजात के सारे रास्ते मसदूद नजर आए तो उसको मुबलिस कहते हैं, यानी जिसको अब कोई उम्मीद नहीं रही कि मेरे बचने की कोई सूरत है और मैं वापस आ सकता हूँ। तो बहरहाल इसकी शान नज़ूल में सही बुखारी में वाक़िया आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की थी इस कौम के बारे में कि अल्लाह इन पर वो कहत मुसल्लत कर दे जो कि तूने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में किया था, क्योंकि ये एक आखिरी बात होती है, इसके बाद फिर झंझोड़ा जाता है ना, ये कोई बद्दुआ नहीं होती। असल में नबी फिर भी इनको बचाना चाहता है कि अभी तक भी नहीं बचे, चले अल्लाह हो सकता है कि किसी अजाब को देख कर ये बच जाए। बहरहाल इतना सख्त अजाब आया, कहत तो आया कि इनको जानवरों के चमड़े तक खाने पड़े। फिर अबू सुफियान आया नबी सल्लम के पास, रिश्तेदारी का नाता दिया, वास्ता दिया, कहा आपको ये अच्छा लगेगा कि आपके भाई बंद इस तरह के हालात में हो तो आप दुआ करवा दें। इससे क्या पता चलता है कि पता उनको भी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नबी हैं, लेकिन फिर पलट जाते हैं, फिर पलट जाते हैं। और बिल आखिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था, आपने वाकई फिर दुआ की और उसके ऊपर फिर यह अजाब ख़त्म हुआ। ये जो लफ्ज़ है ना फमस तकानू, सकना से है और काफ व नून से भी, इसके दो रूट हैं, इस तकानू काफ व नून से भी है। कुन फयाकून का जो लफ्ज़ हम पढ़ते हैं कौनो मका, हो जाने के मानों में, तो फिर मानी क्या बनेगा, ना वो हुए, यानी वो ऐसे ना हुए, अंदाज है बात करने का। और सकना से भी ये हो सकता है, सुकून से ठहरे, तो फिर क्या मतलब है, ना वो ठहरे। तो सारी बात का खुलासा है कि कुफर इंसान के दिल को सख्त कर देता है, फिर बड़े से बड़े अजाब, डिप्रेशन, परेशानियाँ, बीमारियाँ, बड़े बड़े हमले होते हैं इंसान की इज्जत पे, उसकी जान पे, फिर भी नहीं समझता। ये भी तो अजाब ही है ना जो दुनिया में दिखते हैं हमें, जबकि मोमिन छोटी सी तकलीफ पे लरस जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने वाला बना दे। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं उनको नेमत ना दूँ तो इनके दीन का नुकसान हो जाए, यानी वो शुक्र गुजार होते हैं, असल में नेमतों को पा के शुक्र करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको मैं मुश्किल ना दूँ तो भी उनका दीन ख़राब हो जाए, यानी वो सब्र में जन्नत पाते हैं। सूरह अनाम आयत 42 और 43 में भी हमने यही बात देखी थी। तो यहाँ तक अब तिलावत सुनेंगे।
بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون